चौथा श्लोक देखिए, तथा पदम तत् परिमार्गतव्यम यस्मिन् गतानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी तथा पदं तत् परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। असंग शस्त्रेण हृदयेन छित्त्वा वैराग्य के द्वारा इस संसार को काट गिराओ, समाप्त करो। फिर करो क्या करो कि तथा तथा मैंने उसके बाद तत्पदम परिमार्गतव्यम उस पद का की खोज करनी चाहिए। यस्मिन गता न निवर्तन की भूया जहां पर जाने के बाद में फिर लौटना नहीं पड़ता। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये और उसी इस प्रकार से कहो कि वो जो परमात्मा है जहां पर कि हमें अंततम पहुंचना है हम उसी की शरण में हैं। तम एव तमेवन उसी की आद्यम पुरुषम उसी आद्य पुरुष की प्रपद्ये उसके हम शरण में हैं। और फिर किस पुरुष की शरण में है यथा प्रवृत्ति प्रसृता प्राणी जहां से प्रवृत्ति प्राणी प्रवृत्ति प्रसृता जहां से बहुत प्राचीन प्रवृत्ति का विस्तार होता है। अभी बहुत से श्लोक गीता में एक ही भाव को बोलने वाले हैं, तरह तरह से जगह जगह बातें की कही गई हैं। इस श्लोक में जो बातें हैं गीता में अन्यत्र भी आ चुकी हैं और आगे भी आती रहती हैं बार बार। जैसे तथा पदम तत् परमार्गतव्यम उसके बाद उस पद को खोजना चाहिए। मैंने दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि अपने चित्त को शुद्ध करो, वैराग्य भाव लाओ, सप्तगुण को लाओ, और फिर दूसरा काम ये है कि ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। ये दो मंजिलें हैं, पहले तो निष्काम कर्मयोग के द्वारा चित्त को शुद्ध करो, फिर परमात्मा का स्मरण करते हुए चित्त को शुद्ध करो, फिर परमात्मा के परोक्ष ज्ञान के द्वारा फिर परमात्मा की सत्यता और जगत की मिथ्यात्व को देख करके ऐसे उस ज्ञान को ला करके चित्त को और शुद्ध करो। सप्तगुण के वृद्धि सप्तगुण बढ़ना चाहिए। सप्तगुण के लक्षण क्या हैं कि मन शांत हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, ज्ञान में रुचि हो जाए और सर्वात्म भाव आने लगे, सबसे प्रेम भाव हो जाए, विनम्रता आ जाए, दया क्षमा सात्विक गुण आ जाए, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। इन्हीं के लिए व्यक्ति को बहुत दिन तक अभ्यास करना पड़ता है, बहुत दिन तक प्रयास इन्हीं को करना पड़ता है। अनेक जन्म संसिद्धि तथो यापि पराम गतिम, अनेक जन्म संसिद्धि मैंने अनेक जन्म में व्यक्ति यही करता रहता है करता रहता है तब उसे संसिद्धि प्राप्त हुई। जब संसिद्धि प्राप्त हुई तब क्या करे कि बात उसके बाद जो है वो उस परमात्मा को प्राप्त करे। संसिद्धि फिर जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। वैसे यहाँ भी कहते हैं कि पहले तो ज्ञान वैराग्य के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करो, सत्वगुण अपने अंदर लाओ, ये संसार से छुटकारा अपने आप को दिलाओ। जब संसार से मोह छूटे, आसक्तियाँ छूटे, तो अब जब आपका चित्त उधर की तरफ से हटे जगत की तरफ से, तब इसे परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। तथा पदम तत् परिमार्गतव्यम। अब एक शब्द यहाँ पर देखो, परिमार्गतव्यम देते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं बताते हैं और कोई लौकिक उपाय नहीं बताते हैं, ये बताते हैं परिमार्गतव्यम। परिमार्गम के माने हैं खोजना, खोज पता लगा। इसके माने चित्त शुद्ध हो जाए तो अपने हृदय में पहुंच करके उस परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढो। ढूंढने के क्या उपाय है शास्त्र में बताए, जिस प्रकार से जो उपाय बताए गए उस प्रकार से अपने हृदय में उस परमात्मा को ढूंढो। ढूंढते ढूंढते वो परमात्मा अपने हृदय में मिलेगा, लेकिन उसमें ढूंढने में लगे रहे उसके परमात्मा। परमात्मा को अपने हृदय में कौन ढूंढेगा? जो परमात्मा की शरण में होगा, जिसने ये निश्चय बना लिया अब हमारा शेष जीवन परमात्मा के लिए ही है, अब हमें जीवन में और कोई कार्य नहीं करना है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ लेना देना नहीं है, एकमात्र परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय अगर बुद्धि में आ गया तो इसका नाम क्या हुआ? तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये। ये बोले कि हे भगवान, हम तो आपकी शरण में हैं और आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। और जब इस प्रकार से तो अपना समर्पण भाव हो परमात्मा के लिए, और इसी समर्पण भाव को रखते हुए फिर परमात्मा को खोजे, तब एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सहायक ज्ञान है और भक्ति है। कौन सा ज्ञान? जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। वो विज्ञान के माने क्या है? परमात्मा के अपने हृदय में खोज। और भक्ति के माने क्या है? उस परमात्मा के लिए हम अपने जीवन को हार जाएं, उसी के लिए समर्पित कर दें कि परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं चाहिए, उसी के शरण में हम हैं। जब परमात्मा के शरण में होकर के उसी के लिए समर्पित होकर के परमात्मा को अपने हृदय में खोजेंगे तभी परमात्मा मिले। तो ज्ञान भी हो गए, भक्ति भी हो गए। पहली पंक्ति में तो ज्ञान हो गया, तथा पदम तत् परमार्ग तद्यम। तीसरी पंक्ति में तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये, हम उसी आदि परम पुरुष परमात्मा की शरण में हैं, ये जो है उसकी भक्ति हो गई। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की है किसी व्यक्ति को तो भक्ति की जरूरत नहीं है, और किसी को भक्त है तो उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो सब संसार में लोगों ने संप्रदायवादियों ने उड़ा रखा है। संप्रदायवादी होते हैं कुछ शास्त्रों के अपने अध्यात्म के तमाम संप्रदाय, तो भक्ति संप्रदाय आया तो बोलने लगा भक्ति सब ठीक और कुछ नहीं, ज्ञान का संप्रदाय आया तो ज्ञान ही ज्ञान सब कुछ है, भक्ति की बेकार। ऐसे वो अपने संप्रदायवादी अतिवादी हो जाते हैं और अपनी अपनी बात जो लेकर के उसकी तोड़ दौड़ते हैं। लेकिन शास्त्र जो है, गीता शास्त्र है, उपनिषद आदि हैं, जितने ये ग्रंथ हैं प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ये इस प्रकार के अतिवाद में नहीं पड़ते। ये दोनों बातों को लेकर चलते, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती, ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जब परमात्मा में हमारा प्रेम होगा तभी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही परमात्मा नहीं तो कहाँ से परमात्मा ज्ञान हुआ जाता है, कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? इसी प्रकार से यदि परमात्मा को हम जानते नहीं, शास्त्रों को भी नहीं पढ़ा, संतों को भी नहीं मिले, सत्संग भी नहीं किए, कुछ जाना भी नहीं, तो परमात्मा में प्रेम कहाँ से हो जाएगा, विश्वास कहाँ से हो जाएगा, भक्ति कहाँ से हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकता। इसलिए ये है एक दूसरे के पूरक, ज्ञान भक्ति का पूरक है, भक्ति ज्ञान का पूरक है, वो ये श्लोक सिद्ध कर देता है। दोनों बातें साथ साथ हैं। अब इस प्रकार से करने से इसका फल क्या होगा? तब कहते हैं कि यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूयः, जहां से पहुंच करके फिर लौटना नहीं पड़ता। यस्मिन गता माने जहां गए, तो न निवर्तन्ति भूयः, भूयः माने फिर, न निवर्तन्ति माने लौट करके नहीं आना पड़ता। माने ये श्लोक जो है आठवें अध्याय का स्मरण दिलाता है। आठवें अध्याय में कहते हैं भगवान ने कहा कि देखो दो प्रकार की गतियां हैं, एक पुनरावर्ती गति है और एक अपनरावर्ती गति है। पुनरावर्ती गति किनकी है? जो कर्म के बंधन में है वो शरीर छोड़कर के नरक जाएंगे तो लौट करके फिर आ जाएंगे। अगर उन्होंने पुण्य कार्य किए हैं तो शरीर छोड़ेंगे स्वर्ग जाएंगे, वहां के सुख भोग करके फिर लौट आएंगे। तो ये जो शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं वो अनेक लोगों में अपने सुख दुख भोगने के लिए जाते रहते हैं और लौट लौट करके मनुष्य लोक में आते रहते हैं। तो ये तो सब पुनरावर्ती गतियां हुई। अपनरावर्ती क्या है? कि एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसके बाद न कहीं आना है न कहीं जाना है, इसके इसलिए अपनरावर्ती गति कहते हैं। तो उसी को फिर यहाँ भगवान ने रिपीट कर लिया, यस्मिन गता, जिस पद को प्राप्त करके जहां पहुंचने पर न निवर्तन्ति भूयः, व्यक्ति लौट करके फिर नहीं आना। आठवें श्लोक में, आठवें अध्याय में भगवान बोले थे आप अपने भगवान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन देखो ब्रह्म लोक तक जितने लोग हैं ये सब पुनरावर्ती हैं। माम उपेक्ष तो कौन ते है पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेक्ष मुझको प्राप्त होने के बाद में पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म नहीं होता यही न निवर्तन की भूया उसको बोले यहाँ पर कि देखो उसको लौट करके फिर नहीं आना पड़ता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुवाप्तमंती महात्मा संसिद्धिम परमाम गतः, ऐसे करके एक स्थान पर आता गीता में कि माम उपेत्य पुनर्जन्म मुझको प्राप्त होकर के फिर व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता। कैसा पुनर्जन्म नहीं होता है कि दुखालयम और अशाश्वतम, ये जो पुनर्जन्म है ये दुखालय है, दुखालय के मैं संसार का नाम दुखालय, ये सुखदायी संसार में फिर व्यक्ति को नहीं आना पड़ता। दुखालय अशाश्वतम और ये संसार अशाश्वत भी है, शाश्वत नहीं है, बदलता रहता है, विकारी है, परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी कोई बहुत परिश्रम किया कुछ बन गया तो लगा ये हमने कर लिया और फिर देखा कि धीरे धीरे कर निकल गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर बनाओ फिर बिगड़े, फिर बनाओ फिर बिगड़े, ये संसार इसी प्रकार के चलता है। ये संसार के ऐसी है कि कहते ना आत्मवंती महात्मा ना, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के बाद में फिर संसार सागर में उसको व्यक्ति को नहीं आना पड़ता। बस उसी भाव को यहाँ पर भी कहते हैं ऐसे ऐसे गीता हम तमाम श्लोक हैं जहाँ पर पुनरावर्ती गति के लिए भगवान ने बोला है कि ये क्या है कि कर्म करते रहो, शुभाशुभ कर्म करते रहो, कहीं नरक जाओ कहीं स्वर्ग जाओ, कहीं देवता बनो कहीं गंधर्व बनो, और फिर धूम धाम करके फिर मनुष्य शरीर में आ जाओ और फिर उसी घन चक्कर में पड़ जाओ, फिर उसी में लगे रहो, ये तो जीवन का सुंदर रूप नहीं, ये जीवन का कोई आदर्श रूप नहीं, ये अज्ञानियों का काम है कि कोलू के दल की तरह से घूमते रहो घूमते रहो, सड़क जाओ नरक जाओ, ये बनाओ वो बनाओ, कोलू के दल की तरह घूमते रहो घूमते रहो, ये कोई जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन तो ये है जब व्यक्ति सबसे छुटकारा करके स्वतंत्र हो जाए, सर्वतंत्र स्वतंत्र, न कहीं जाना न कहीं आना न कहीं बनना न कहीं बिगड़ना। एक एक संत ये कहते हैं कि देखो इस पंक्ति को इस प्रकार से देखो, यस्मिन गता न निवर्तन की भूया, ऐसा लगता है कि एक परम गति है, उस परम गति में जाने का रास्ता तो है लेकिन लौट के आने का रास्ता नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। लेकिन थोड़ा विचार करो तो ऐसा लगता है कि जहां जाओ तो वहां से लौट करके भी आते ही, जब जाने का रास्ता होगा तो लौटने का रास्ता भी होगा, क्यों नहीं लौटने का रास्ता होगा। जल्दी व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन शास्त्रकारों ने संतों ने जब और गहराई से विचार किया कहा ये तो कहने का तरीका है। जब बाजार ने प्रतिशत देखा तो ऋषि क्या बोले कि देखो ये लोग जो ज्ञानी व्यक्ति हैं आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान को जो प्राप्त हो गए हैं, इनका ये है शरीर से इनके जीव का उत्क्रमण नहीं होता, उत्क्रमण नहीं होता, शरीर से जीव निकले और फिर कहीं किसी लोक में जाए और फिर वहां रहे लौट करके ना आए, ये सब नहीं होता। फिर क्या होता है कि वो अपने शरीर में इसी शरीर में रहते ही अपने उस स्वरूप को जान लेता है कि जो आत्मा है, जो सर्वात्मा है, जो परमात्मा है, जो आकाश से भी अतीत होकर के सर्वत्र एक समान विद्यमान है, वही अपना स्वरूप है। ज्ञान कैसा हुआ कि हम वो सत्ता हैं, हम वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप हैं जो अनादि अनंत होकर के सर्वत्र विद्यमान है, जो न हिल सकता है न बोल सकता है, जो न कहीं जा सकता है न कहीं आ सकता है, न बन सकता है न बिगड़ सकता है, जिसका न उपचय हो सकता है न अपचय हो सकता है, ऐसा तो मैं हूं। तो अब ऐसा अगर मैं हूं तो मैं कहां जाऊं? कहते हैं यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूयः, वहां जाकर के व्यक्ति फिर लौटता नहीं। तो अब ऐसा जो अनंत चैतन्य परमात्मा है वो कहां जाएगा? कहीं जाने के सवाल ही नहीं। वहां जाने के माने केवल यह है कि अपने उस वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना, पहचान लेना ही वहां पहुंच जाना। और आत्मज्ञान का लक्षण यह है, और सभी ज्ञान का लक्षण यह होता है कि ज्ञान अज्ञान तो निवृत्त हो जाता है, अज्ञान को तो दूर किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को दूर नहीं किया जा सकता। ज्ञान को दूर करके अज्ञान में फिर आ जाओ तो ऐसे आने का रास्ता नहीं है। ये ज्ञान ही एक ऐसा है जिसको आप कह सकते हो वन वे ट्रैफिक। अज्ञान जहां तक आपको है तो आप चाहो तो अज्ञान से निवृत्त हो जाओ, ज्ञान में पहुंच जाओ बस। और जब तक नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे तब तक अज्ञान में बने रहोगे। लेकिन जहां आप अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान में पहुंच गए तो बोले कि फिर आप नहीं है, ज्ञान ठीक नहीं है, चलो अज्ञान में चलो, तो अज्ञान में आप जा ही नहीं सकते। इस दृष्टि से ये कहते हैं कि वो पद ये यस्मिन गतान निवर्तन भूया, वो ऐसा पद है उस परमात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की स्थिति में ही व्यक्ति रहता है। अंत में चौथी पंक्ति की एक बात और कहते हैं, वो परमात्मा और जिस परमात्मा को पहुंच करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस परमात्मा का थोड़ा सा परिचय देते हैं। कहते हैं वो कैसा है, यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, यथा जहां से पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसुता, जहां से बहुत प्राचीन काल से अनादिकाल से प्रवृत्ति का विस्तार होता रहा है, होता चला आया है। यह इतना वाक्य जो है ये बड़ा गंभीर, इसके आचार्यों ने दो प्रकार से अर्थ बताए हैं। एक अर्थ तो ऑब्जेक्टिव है, वो ये कहते हैं कि देखो इस जगत की उत्पत्ति कहां से हुई, कहते हैं उसी परमात्मा से हुई, अंत में हम जिस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसी परमात्मा से ही सारी जगत की रचना हुई है, उसी से सब फैला है जगत, उसी में ही सारा जगत स्थित है, उसी में सारा जगत विलीन हो जाता है। गीता में भगवान ने ऐसा कहा है और उसी के आधार पर लोग बात कहते हैं। यहां भी भगवान यही कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें जगत स्थित है, जिसमें जगत विलीन हो जाता है, उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा से जगत की उत्पत्ति तो हुई और जगत की उत्पत्ति हुई तो ऐसे उत्पत्ति हुई जैसे सागर में जल से तरंग की उत्पत्ति हुई हो, ऐसे यह परमात्मा तरंगायित होकर के परमात्मा मानव जगत के रूप में उपलब्ध हो गया है। लेकिन ये जगत क्या है, परमात्मा ही तो है, परमात्मा से तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि जगत को हमने मान लिया सत्य और परमात्मा को मान लिया मिथ्या, ये विपरीत बुद्धि हो गई। तो कहते हैं यदि हम चाहते हैं संसार सागर से निवृत्त होने के लिए तो इस जगत में जो हमारा मोह है, आसक्तियां है, उसको हम छोड़ें और इस जगत का जो आदि कारण परमात्मा है उस परमात्मा को पकड़ें। अगर आपको इस जगत में भी आकर्षण दिखाई देता है, कहीं सुंदरता दिखाई देती है, कहीं सुख दिखाई देता है, तो इस जगत का नहीं है वो भी परमात्मा ही का है। जिस परमात्मा के कारण से ये जगत सुंदर लग रहा है, जिस परमात्मा के कारण से जगत ये मधुर लग रहा है, जिस परमात्मा के कारण से जगत सुखदायी लग रहा है, उस परमात्मा को तो गए भूल और इस जगत को पकड़े आप बैठे। और कैसा जगत ये, कि यह है जो कि विकारी परिवर्तनशील है, आद्यंत वाला है, नित्य रहने वाला नहीं, दुखदायी है, उसको आप पकड़े बैठे। तो कहते हैं इस बात को समझो कि परमात्मा को पकड़ो, संसार को छोड़ो, जगत को छोड़ो और उसी परमात्मा की शरण में जाओ। जैसे हम अज्ञान की अवस्था में संसार विषय वस्तुएं परिवार धन संपत्ति इनकी शरण में होते हैं, हम इन्हीं की शरण पकड़े रहते हैं, ये समझते हैं यही हमारी रक्षा कर रहे हैं, यही हमारी रक्षा करेंगे, इन्हीं से हमारा बचाव होगा, इन्हीं से हमारा जीवन चलेगा, यही हमारे लिए सब कुछ है, जो भाव इनके प्रति होता है ऐसे भक्त को या ज्ञानी को यही भाव परमात्मा होता है। वो जानता है कि परमात्मा ही हमारा आश्रय स्थल है, परमात्मा ही हमको जो कुछ खिला पिला रहा है परमात्मा ही खिला पिला रहा है, जीवन चल रहा है तो परमात्मा चालन चल रहा है, जो कुछ हमारी रक्षा सुरक्षा है वह परमात्मा के कारण है और अंततः जो रक्षा होने वाली है, किसी प्रकार की भलाई होने वाली है, मुक्ति होने वाली है, ज्ञान होने वाला है, बंत होने वाली परमात्मा ही से होने वाली है, वही फलीय दिलाएगा, इस संसार से होने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो है वो जगत को छोड़ करके परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं। इसमें पंचदशी में भी आचार्य ने उदाहरण दिया कि परमात्मा में प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसा आपको विश्व में प्रेम है, जैसा आपको शरीर में प्रेम है, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं में जैसा आपको प्रेम है, ऐसा प्रेम परमात्मा में होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अपने आप पहचान करके देखो कि ये कैसा प्रेम है। अगर उदाहरण से आपको समझ में आ जाए तो परमात्मा में वैसे ही प्रेम रखो। एक अर्थ तो इसका स्पंति का ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी है, और एक दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ ज्ञानी व्यक्ति जो आप तत्व के परमात्मा की खोज करते हैं उनके लिए ये सूझ है, क्योंकि देखो अपने आप को उस आत्मा में परमात्मा में समर्पित करो जहां से आपका अहंकार उत्पन्न हो रहा है। यहां प्रवृत्ति के माने है अहंकार। अहंकार का आदि कारण क्या है, अहंकार का आश्रय स्थल क्या है, कहां से अहंकार उत्पन्न हुआ? कि वो जो आत्मा है, शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है, उसी आत्मा से ही अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, मन बुद्धि चित्त हुए तो उसी से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार भी एक वृत्ति है, जैसे मन एक वृत्ति है, बुद्धि एक वृत्ति है, ऐसे ही अहंकार भी एक वृत्ति है। जहां मैंपन लगता है, शरीर में मैंपन लगना एक वृत्ति है। इस वृत्ति का, अहंकार की वृत्ति का अधिष्ठान क्या है, कि जहां पर ये आश्रित है और जहां ये चली जाती है, जहां से ये आती है अहंकार की वृत्ति, वही उसका अधिष्ठान है। अगर सुषुप्तावस्था में ये अहंकार की वृत्ति लीन हो जाती है तो कहां चली जाती है? अगर स्वप्नावस्था में जागृतावस्था में अहंकार की वृत्ति फिर आ जाती है तो कहां से आ जाती है? कभी विचार किया कि अहंकार 24 घंटा बना रहता है? अहंकार 24 घंटे तो नहीं रहता, नहीं रहता तो जब नहीं रहता तब इसका क्या होता है? और जब आ जाता तो कहां से आ जाता? इस बात का विचार करो। तो जो व्यक्ति अहंकार की उत्पत्ति के स्रोत को ढूंढता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे तीसरी मंजिल से छत के ऊपर से कोई नीचे गिरे सिर के बल, तो उसका क्या होगा? वही दशा उस अहंकार की होती है, अहंकार भी छार छार हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन उस अहंकार तब तक अहंकार बना रहता है जब तक अहंकार का जो अधिष्ठान है, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, जहां ये लीन हो जाता है, उस तत्व को जब तक हम नहीं प्राप्त करते तब तक अहंकार बना रहता है। और जब तक अहंकार बना रहता है तब तक अज्ञान बना रहता है, जब तक अज्ञान बना रहता है तब तक संसार बना रहता है, जब तक संसार बना रहता है तब तक बंधन बना रहता है, तब तक पुनर्जन्म बना रहता है, तब तक दुख बने रहते हैं, भय चिंता क्लेश आदि बने रहते हैं। इसलिए इन सबका मूल कारण अहंकार है। अहंकार समाप्त हुआ तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। राग द्वेष भी अहंकार में उत्पन्न होते हैं। अहंकार से उत्पन्न हुए राग द्वेष, राग द्वेष से उत्पन्न हो गया संसार। अगर अहंकार ही नहीं तो राग द्वेष भी नहीं, राग द्वेष भी नहीं तो संसार भी नहीं। देखो ये अपने आप बार बार देखने पड़ते हैं अपने भीतर कि सब कैसे है। देखो विचार करो, तो इसके लिए एक युक्ति बताई, कहा कि देखो अपने हृदय में पहुंच करके ये देखो, अपने अहंकार को देखो और अहंकार के दृष्टा को देखो। अपने हृदय में दो चीजें, एक है अहंकार और एक है अहंकार का दृष्टा। जो अहंकार का अधिष्ठान है वही अहंकार का दृष्टा है। जो अहंकार का दृष्टा है वो देखता है कि देखो अभी तक अहंकार था, अब समाप्त हो गया। वही कहता है कि देखो अभी तक अहंकार नहीं था, अहंकार पैदा हो गया। इस प्रकार अहंकार के उत्पन्न होने, लीन होने को जो देख रहा है उस दृष्टा को, साक्षी को देखो। और फिर भगवान कहते हैं कि तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, उसी पुरुष को जो साक्षी पुरुष है, जो दृष्टा है, उसकी शरण में जाओ। अहंकार की शरण में न रहो। अज्ञानी व्यक्ति अहंकार की शरण में रहता है, अहंकार को नहीं मिटने देगा, अहंकार को पकड़े रहेगा। वो जानता है कि अगर हमारा अहंकार घट गया, मिट गया, तो फिर हम ही नहीं रह जाएंगे, ये भय से बना रहता है। इसलिए अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए 1000 उपाय करेगा। कहे कि भाई भूख लगी तो मांग लो किसी से, क्या बात है, कैसे मांग लो, हमको कहा नहीं मांगना, कभी क्या कर रहा है वो अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है। किसी ने जरा से कोई बात कह दी तो वो बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए भाई, हमारे अहंकार को ठेस लग गई, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, अहंकार को ठेस लग गई, लग जा रहे हैं तो क्या बात है, ना हमें रक्षित सुरक्षित रखना है अपने अहंकार को, उसमें ठेस नहीं लगने देना है। ये अहंकार की रक्षा के लिए प्रयास तब तक चलते रहते जब तक हम उसकी शरण में हैं, उसी को महत्व दे रहे हैं। भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं कि देखो जिस अहंकार का जो आदि कारण है, जो साक्षी चैतन्य, उसकी शरण में जाओ, उसकी रक्षा करो, उसको पकड़ो, उसी को मानो कि वही सब कुछ है, अहंकार को करें, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम है परमार्थ पद की प्राप्त करना, ये परिमार्गतव्यम, यही परिमार्गन है। यदि हमने अपने अहंकार का मूल तत्व खोज लिया तो यही परमार्गन हो गया। बस इस प्रकार से देखो यह इन इस श्लोक में आकर के ये विधान बता दिया कैसे उस स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस अध्याय में जो मुख्य बात थी वो हो गई यहाँ तक, अब आगे उन पर विस्तार करते जाते हैं, एक एक बात को लेकर के विस्तार करेंगे तो उनको आगे देखेंगे। सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छर रूपं निर्भरामि सामादिदोषरहितं कुर्वन् सञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम।
हरि गुरु।